नमस्कार श्रोताओं, खेल खबरों के आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी जी। नमस्कार मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस जान लेते हैं। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता। स्विस ओपन बैडमिंटन सुपर 300 टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यों की पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। और क्रिकेट में के मैदान से शुरुआत करते हैं आज के स्पोर्ट्स कैन का। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता। दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलोर को 114 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बेंगलोर ने 19 ओवर 3 गेंद में 2 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बेंगलोर के लिए सोफी डिवाइन ने 32, कप्तान स्मृति मंधाना ने 31 और एलिस पेरी ने नाबाद 35 रन की पारी खेली। इससे पहले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 19वें ओवर में 113 रन बनाकर आउट हो गई। बेंगलोर की ओर से सोफी मोलिनियो ने 3 विकेट जबकि श्रियंका पाटिल और आशा शोभना ने 2-2 विकेट लिए। बेंगलोर की जीत की नींव सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन की जोड़ी ने ही रख दी थी। जैसे अगर उनका स्कोर देखे तो
बचपन में कहावत सुना करते थे हम लोग कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मुझे लगता है उसका एक सटीक उदाहरण था ये, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बहुत शुरुआत जो है दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत धमाकेदार की थी, उसके बाद टीम ऐसी बिखरी। एक ओवर में जब 3 विकेट सोफी ने चटकाए शेफाली जेमिमा और एलेक्स कैप्से के, उसके बाद से फिर एकदम कोलैप्स ही हो गया बुरी तरह से। और वहीं इस पर कोई किसी तरह का पैनिक नहीं बनाया, क्योंकि अगर आप देखें जब आरसीबी रनों का पीछा कर रही थी तो रन इतनी आसानी से बन नहीं रहे थे, गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने बिना कोई जोखिम लिए हुए डॉट बॉल जा रही है तो जाने दीजिए, कोई उसकी परवाह किए बिना आराम से खेले वो, और लक्ष्य को बहुत ऐसे सहजता के साथ उन्होंने पार कर लिया। यानी अगर दिल्ली तेज खेलकर धीमा आता है खेलता है तो ये लोग धीमा खेलकर फिर बाद में तेज खेलते हैं। तो ये कुछ
क्योंकि मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी लास्ट मोमेंट तक ये था, फर्स्ट टू टॉप में तो मुंबई और दिल्ली थी और थर्ड के लिए काफी कंपटीशन हो रहा था और लास्ट मोमेंट तक डिसाइड हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब पहुंची है फाइनल में और आखिरकार खिताब अपने नाम किया और बहुत ही बखूबी खेली, क्योंकि अगर स्मृति मंधाना और सोफी डिफाई ने 49 बॉल्स पर 49 रन की साझेदारी की तो बहुत ही कमाल कर दिया।
कमाल का प्रदर्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तो ये मैच को देखकर ऐसा लगता है कि क्रिकेट जो है बैट और बॉल से नहीं खेला जाता बल्कि मानसिक दृढ़ता का खेल है। और मानसिक दृढ़ता में जो टीम जिसका लीग में परफॉर्मेंस दिल्ली की तुलना में हल्का रहा हो वो टीम आकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आपने स्मृति मंधाना का जिक्र किया, स्मृति मंधाना का परफॉर्मेंस उनकी ख्याति के अनुकूल कोई बहुत शानदार नहीं था इस बार पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन फाइनल में कहते हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े मैच में चमके और अपनी टीम को जिताए, और अगर खिताबी जीत दिलाए तो उसका मजा ही कुछ और होता है।
बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का अगर देखें तो धमाकेदार शुरुआत जैसे आपने बोला हुई और मतलब टीम ने अगले 9 विकेट 55 रन बनाने में ही गवा दिए, तो बहुत ही हैरत हुई ये देखकर।
बिल्कुल, 64 रन विदाउट लॉस और उसके बाद 63 पे 3, एक ओवर में 3 विकेट गिरते हैं। आप देखिए चार खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुए, एक खिलाड़ी लेग साइड की गेंद को पर छेड़खानी करते हुए आउट हुआ, एक क्रॉस खेलते हुए आउट हुआ। बस एक दो अगर डिस्मिसल को छोड़ दें तो ज्यादातर डिस्मिसल में मैं कहूंगा कि दिल्ली की जो प्लेयर्स थी उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है।
शेफाली वर्मा के आउट होते ही ऐसा लगा कि सिलसिला शुरू हो गया है विकेट गिरने।
बिल्कुल, एक ओवर में 3 विकेट गिरना, फिर उसके बाद जो आशा सुभाना थी उनके ओवर में 2 विकेट गिरना, फिर श्रियंका पाटिल जो इंजर्ड थी, इंजरी मतलब उनके जो नॉन बॉलिंग आर्म में हेयरलाइन फ्रैक्चर था, उसके बावजूद उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने विकेट चटकाए हैं। तो टॉप 3 विकेट टेकर जो है वो आरसीबी के हैं, यानी बॉलिंग बहुत आला दर्जे की रही और 4 विकेट यदि उनको ऐसे मौके पे मिलते हैं और वो भी अलग अलग तरह से प्रयोग करके तो वो काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है।
और काबिले तारीफ तो शेफाली वर्मा का भी प्रदर्शन रहा, हालांकि उनकी टीम हार गई लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने काफी अच्छा खेला और सिक्सर क्वीन कहा गया इस बार तो उनको, क्योंकि एक सत्र में जो है 20 छक्के उन्होंने लगाए हैं तो वो भी कमाल
करती अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से आप वो कदमों का इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से कलाइयों का इस्तेमाल करती हैं और उनके सिक्सर्स को देखकर लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही हैं, बिल्कुल एफर्टलेस शॉट होते हैं और गेंद सहजता के साथ बड़े जब सीमा रेखा को पार करती है तो वो लम्हा देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कोई भारतीय महिला खिलाड़ी जो है इतनी डैशिंग तरीके से खेल रही है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत डिफेंडिंग डिफेंस करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को देखा है, इतनी तेज, इतनी अटैकिंग और इतना चढ़कर खेलना बिल्कुल वीरू की याद दिलाती है वीरेंद्र सहवाग की।
चलिए अब WPL के बाद IPL का इंतजार है, उसमें कैसा रोमांच रहेगा वो देखने को मिलेगा सिर्फ वहां से। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला चल रही थी और आज तीसरे और अंतिम क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश श्रीलंका को हरा रहा है, बेशक अपने देश में ही सही, और वो भी तब जबकि श्रीलंका की तरफ से एक सेंचुरी जनित लियांगे लगाते हैं और उसके बावजूद पूरी टीम एफर्ट देखने को मिलती है बांग्लादेश की तरफ से, चाहे वो तंजीद हसन हो उनके 84 रन हो, चाहे रिशाद हुसैन के 18 गेंदों पर 48 रन की धमाकेदार आतिशी पारी हो, तो यानी तेल जो है ना, गहराई जो है बल्लेबाजी की, वो बांग्लादेश को बहुत विशिष्ट बनाती है और इसी वजह से बांग्लादेश ने इस बार जो है टेस्ट में न्यूजीलैंड में जाकर हराया है, तो वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अभी
बैडमिंटन कोर्ट पे चलते हैं, स्विस ओपन बैडमिंटन सुपर 300 टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन टूर्नामेंट में अपनी शानदार लय जारी रखना चाहेंगे और अनुभवी पीवी सिंधु की कोशिश एक बार फिर से अपने खेल के शिखर पर पहुंचने की होगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में कल लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के लियोंग जूनहाओ से होगा, वहीं के श्रीकांत का सामना चीनी ताइपे के वांग जू वेई से तथा प्रियांशु राजावत का मुकाबला हांगकांग के ली चेव यूयू से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की तरह इस टूर्नामेंट में भी पहले दौर में जर्मनी की वोने लिए से होगा। इसके अलावा महिला डबल्स के पहले दौर में तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पनप्पा अपनी चुनौती पेश करेंगे। अगर पेरिस ओलंपिक के लिहाज से देखा जाए वहां जगह पक्की करने के लिए तो ये जो टूर्नामेंट है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अलग से रेस टू पेरिस रैंकिंग भी शुरू की गई है और जिसकी जो पब्लिश होनी है फाइनल लिस्ट 30 अप्रैल तक, तो इस दौरान जितने टूर्नामेंट्स होंगे तो ये आखिरी देखा जाए हो सकता है।
बिल्कुल, आप ये देखें ना कि कंसिस्टेंटली कुछ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लक्ष्य सेन खिताबी जीत बेशक हासिल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सेमीफाइनल तक लगातार पहुंच रहे हैं, और किदांबी श्रीकांत की टाई थोड़ी सी मुश्किल है, ताइपाई की जो खिलाड़ी है उनके सामने, वो एशियाई खेलों का कांस्य पदक भी जीता है, लेकिन ठीक है ये भी वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं भाई, तो टफ फाइट होने वाली है। और मुझे तो बहुत ज्यादा रोमांच इस बात को लेकर होगा कि कैरोलिना मारिन वो इस बार उतर रही हैं स्पेन की, जो कि ओलंपिक चैंपियन है और ओलंपिक में ही इन्होंने पीवी सिंधु को हराया था फाइनल में और 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, तो उनका और पीवी सिंधु क्योंकि अभी इंजरी से लौटी हैं तो उनके सामने अगर उनसे पाला पड़ता है इनका तो वो रोमांच
बढ़ जाएगा
निश्चित तौर पर,
क्योंकि अगर देखा सिंधु चोट से उभरने के बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन से वापसी की जहां उनका सफर क्वार्टर फाइनल तक चला, और हालांकि जो भी पिछले सप्ताह ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में वे दूसरे दौर में ही बाहर हो गई।
बिल्कुल बाहर हो गई थी, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने जो है रिटायर हुई थी, जो खिलाड़ी वी वोन ली, वो उन्हीं के साथ उनका मुकाबला होना है, तो ये एक अच्छा रोमांचक पहलू होगा और पीवी सिंधु को जमने का और अपनी फॉर्म को दिखाने का ओलंपिक से पहले एक सुनहरा मौका होगा ये।
हॉकी के मैदान में चलते हैं, हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यों की हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। 5 मैचों की श्रृंखला में पहला मैच 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेला जाएगा, आखिरी मैच 13 अप्रैल को होगा। भारतीय हॉकी टीम 1 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, हरमनप्रीत सिंह सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इस लिहाज से भी, एक तो पेरिस ओलंपिक के लिहाज से भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ आपका मुकाबला है जिसमें आप प्रो लीग में जिसके साथ हार चुके हैं और उनके साथ ओलंपिक से पहले एक मुकाबला होना किस तरह देखते हैं?
बस मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने फिटनेस पर ध्यान दें और इंजर्ड ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि ओलंपिक से पहले जो यूरोपियन टूर्स होते हैं या हम बाहर जाते हैं वहां से कुछ खिलाड़ी इंजर्ड होकर आते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचना होगा। और कुछ खिलाड़ी भारतीय टीम में, आज मैं एक सूची देख रहा था टीम की, जिन्हें कोई ज्यादा जानते नहीं है लोग, जैसे आमिर अली को कोई नहीं जानता, मोहम्मद राफेल मोसीन को कोई नहीं जानता, अरायजी सिंह है एक फॉरवर्ड के तौर पर, तो फॉरवर्ड्स जो है ज्यादा रखे हैं टीम में, 10 फॉरवर्ड्स रखे हैं, 3 गोलकीपर हैं। तो अब अगर फॉरवर्ड्स में अगर कुछ अच्छे खिलाड़ी मिल जाएं, अब जैसे हमने आकाशदीप को मिडफील्ड में खेलते हुए देखा, अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर, पहले फॉरवर्ड खेलते थे, अब उनका नाम फॉरवर्ड के तौर पर आया है, तो ये कुछ एक बदलाव जो है कोच की तरफ से लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो टीम संयोजन है वो बहुत कारगर साबित हो सकता है इस दौरे से,
क्योंकि हॉकी इंडिया ने पिछले सप्ताह पुरुषों के लिए राष्ट्रीय शिविर के लिए 28 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की थी और इसमें से 27 जो खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में शामिल है। मिडफील्डर जो है रवि चंद्र सिंह इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो संभावितों की सूची में होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे।
जी हाँ बिल्कुल, और ये क्रेग फुल्टन के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, साउथ अफ्रीकी कोच हैं और ये डिफेंस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और ये इनका शुरू से ही मानना रहा है कि आप काउंटर अटैक जब अपोनेंट टीमें करती हैं तो वो भारत के लिए बहुत आत्मघाती साबित होते हैं, इसलिए लगातार अटैक करने की जो प्रवृत्ति है भारत की, जो स्वभावगत तरीके से भारत फॉरवर्ड खेलता है, बहुत ज्यादा अटैकिंग हॉकी खेलता है, तो उससे थोड़ा सा बचे आप, क्योंकि उससे काउंटर अटैक भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करते हैं और डिफेंस पर जितना जोर होगा भारतीय टीम का उतना ही टीम के लिए जो अवसर बनेंगे अटैक करने के तो उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा।
हॉकी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। 14वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो मिजोरम की टीम है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मिजोरम ने आज पंजाब को 4-2 से हराया। अन्य मैचों में असम ने ली पुदुचेरी को 2-1 से मात दी। गोंस और चंडीगढ़ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। राजस्थान और हिमाचल में भी मैच 4-4 से बराबरी पर रहा। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश का सामना बंगाल से, झारखंड का सामना मिजोरम से और हरियाणा का सामना उड़ीसा की टीम से होगा। महाराष्ट्र का मुकाबला किससे होगा ये इसका फैसला कल होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले बुधवार को खेले जाएंगे। और अब बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने कुश्ती की तदर्थ समिति भंग कर दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ को अब पूर्ण नियंत्रण मिल गया है। आईओए ने पिछले साल निलंबित भारतीय कुश्ती महासंघ का काम देखने के लिए यह समिति बनाई थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने यह फैसला तदर्थ समिति द्वारा सफलतापूर्वक चयन परीक्षण कराने और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निलंबन हटाने के बाद लिया है।
ये कुश्ती की जीत है, पहलवानों की जीत है और खेल मंत्रालय ने जो सतत प्रयास किए, एक बीच का रास्ता निकाला, वो वास्तव में स्वागत योग्य है।
जी हाँ, और आगे आपको एक और खबर बता देते हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ आज से 25 मार्च तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में तीसरी सब जूनियर लड़के और लड़कियों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। आज ड्रॉ का आयोजन किया गया जबकि मैच कल से शुरू होंगे। ये प्रतियोगिता बड़े मंच पर मुक्केबाजी के विकास के लिए जमीनी स्तर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। तो देखा जाए तो जो जमीनी स्तर पर जो मुकाबले हैं और जो देखा जाए तो प्रतिभाओं को निकालने, उनको नर्चर करने का जो एक पहल शुरू हुई हमारे देश में वो काफी काबिले तारीफ है।
बिल्कुल, और यहीं से ग्रास रूट लेवल से जितनी प्रतिभाएं आती हैं फिर वो सब जूनियर से जूनियर में जाती हैं, जूनियर से सीनियर में आती हैं और अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं, ये बहुत काबिले तारीफ बात है। क्योंकि पहले होता यह था कि कैडेट यानी सब जूनियर या जूनियर में तो प्रतिभाएं चमकती थी लेकिन सीनियर में आते आते वो फिसड्डी हो जाती थी, वो पता ही नहीं चलता था कि वो कहां चली गई। तो अब अगर लगातार ये प्रयास चल रहे हैं भारत सरकार के या तमाम खेल मंत्रालय के साथ जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं या फेडरेशन है, वो अपने आप में मैं समझता हूं खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर है और ये अवसर जो है खिलाड़ी आगे भी बरकरार रखें, सीनियर लेवल तक उसको मेंटेन करके रखें, ये काबिले तारीफ बात है।
जी हाँ, और मनोज जी अब समय कह रहा है कि हम अपने श्रोताओं से विदा लें, तो आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रोताओं, कल फिर कुछ नई खेल खबरों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।